त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणकिरणम्, विमलयरणेमि चन्दम्, त्रिभुवनचन्दम् नमंसामि। यह त्रिलोक सार ग्रंथ है जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना है, और उसके जो विशुद्धमती माता जी के जो ये भाषांतर है, उसका जो टीका है, उसको हम पढ़ रहे हैं। कल हमने इसकी कुछ प्रस्तावना भी देखी थी, और पंडित टोडरमल जी ने ये त्रिलोक सार ढूंढारी भाषा में लिखा है, उसमें से भूमिका भी पढ़ी थी। अब यहाँ जो 22 पृष्ठ है प्रस्तावना का, वहाँ से हम पढ़ेंगे। ये जीवन परिचय नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का वहाँ तक आया था। पेज नंबर सेम है कि कुछ अलग है? हाँ, वहीं से लेना है। पेज नंबर अलग है क्या उसमें? अच्छा, यानी वो जीरोक्स जो है उसमें अलग नंबर है।
उसमें कुछ आगे वाला अलग है ना?
हाँ, शायद बाद में वो नंबरिंग बराबर हो जाएगा जब मूल ग्रंथ शुरू होगा। आचार्य नेमिचंद का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं, मिला आपको सबको? हाँ, देखिए आप में नंबर 16 नंबर का पृष्ठ है प्रस्तावना का, जहाँ लिखा है जीवन परिचय। आपको शायद निकालने में देरी होगी क्योंकि वो इसमें ले रहे हैं।
हाँ, 15 से
नहीं नहीं वो तो पहले हमने देखा था, वो पैराग्राफ पढ़ा था हमने। अभी 16 प्रस्तावना ऐसा लिखा है, उसके बाद आचार्य नेमिचंद्र लिखा है। मेरे में 21 पेज है और कुछ इसमें तो 15 नंबर है। हाँ, इंडेक्स के पूर्व में आप देखना, हम पढ़ेंगे तब तक। जीवन परिचय उनका देख रहे हैं। आचार्य नेमिचंद्र देशीय गण के थे। ये गण है ना, मुनिराजों के जो अलग अलग संघ होते थे, उनके कुछ नाम होते थे। ये उनका गण का नाम देशीय गण। कर्मकांड की निम्नलिखित गाथाओं से स्पष्ट है कि, क्योंकि कर्मकांड की गाथाओं में वो उन्होंने अपने गुरु को वगैरह नमस्कार किया था, उसमें से ये डिराइव होता है कि अब मैं गाथा छोड़कर नीचे पढ़ रही हूँ। अभयनंदी इनके दीक्षा गुरु थे, यानी उन्होंने अभयनंदी जी से दीक्षा ली थी, और वीर नंदी तथा इंद्र नंदी विद्या गुरु थे, यानी उनके पास से उन्होंने पढ़ाई की थी। अभय नंदी गुरु के पाद प्रसाद से इन्होंने अपने आप को अनंत संसार समुद्र से उत्तीर्ण हुआ प्रकट किया है, और इंद्र नंदी तथा वीर नंदी को श्रुत सागर के पारगामी बताते हुए, श्रुत सागर ने ये जो अपना जो आगम है पारगामी, उसके विशेषज्ञ, उसको जानने वाले, अपने आप को उनका वत्स बतलाया है। कर्मकांड के सत्व श्रुत सागर इन्हें आगम के सागर, आगम रूपी सागर, श्रुत सागर किसी का नाम भी हो सकता है। हाँ, यह श्रुत रूपी सागर के पारगामी, उसके ज्ञाता, एक्सपर्ट, उसमें विशेषज्ञ। कर्मकांड के सत्व स्थान प्रकरण में ये 396 गाथा के द्वारा श्री कनक नंदी का भी उल्लेख किया है और उसमें बताया है इंद्र नंदी गुरु के पास सकल सिद्धांत को सुनकर, यानी सिद्धांत का अभ्यास इंद्र नंदी के पास किया, श्री कनक नंदी गुरु ने सत्व स्थान का निरूपण किया है। कर्मकांड में जो सत्व स्थान है, जैसे उदय स्थान बंध स्थान होते वैसे सत्व स्थान, कहाँ कितने की सत्ता होती है उसको सत्व स्थान कहेंगे। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि कनक नंदी इनके सधर्मा अग्रज गुरु भाई थे। आरा के जैन सिद्धांत भवन में कनक नंदी आचार्य विरचित विस्तर सत्व त्रिभंगी नाम का ग्रंथ विद्यमान है। इसकी दो प्रतियां, एक में 48 और दूसरे में 51 गाथाएं हैं। नेमिचंद्र आचार्य ने कर्मकांड में इस प्रकरण की 358 से 397 तक 40 गाथाएं जो कि त्यों ली है और गाथा 396 में कनक नंदी का उल्लेख भी किया है। त्रिलोक सार के अंत में भी इन्होंने 1018 में गाथा के द्वारा अपने आप को अभय नंदी का शिष्य घोषित किया है। इन्हीं अभय नंदी को चंद्रप्रभ चरित के रचयिता वीर नंदी ने भी अपना गुरु घोषित किया है। गंग नरेश राजमल्ल देव का प्रधान सचिव और सेनापति चामुंडराय, ये आपने चामुंडराय का नाम सुना होगा, ये जो है ना चौन बेलगोला की मूर्ति बड़ी उन्होंने बनाया, ऐसे उनका प्रसिद्ध है उसके लिए वो। चामुंडराय नेमिचंद्राचार्य का भक्त शिष्य था, वह गोम्मट उपनाम से युक्त था। उसी की प्रार्थना पर नेमिचंद्राचार्य ने षटखंडागम की विस्तृत चर्चाओं को जीवकांड तथा कर्मकांड के नाम से संकलित किया था और उन्हें चामुंडराय के उपनाम को लक्ष्य रखते हुए गोम्मट सार नाम दिया था। एक चामुंडराय के नाम से उस ग्रंथ को जाना जाता है और ये मूर्ति को भी गोमटेश्वर कहते हैं। चामुंडराय ने श्रवण बेगुला की जगत प्रसिद्ध 57 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया था। वह प्रतिमा चामुंडराय के गोम्मट उपनाम के कारण, लिखा है देखो, गोम्मटेश्वर नाम से प्रख्यात हुई। चामुंडराय न केवल मंत्री या सेनापति था, वह भव भ्रमण भीरु, भव यानी संसार रूपी भव जो है उसमें भ्रमण करना, उससे भीरु यानी भयभीत, यानी जो संसार से भयभीत थे, महान विद्वान भी था। उसकी प्रशंसा में नेमिचंद्राचार्य ने कर्मकांड की प्रशस्ति स्वरूप बहुत कुछ लिखा है। इस चामुंडराय ने अजित सेन गुरु के पास दीक्षा ली थी। अच्छा, और जीवकांड पर कर्नाटक भाषा में वृत्ति भी लिखी थी। अच्छा, ये मुनि हुए थे बाद में, ये पता नहीं था। इसने चामुंड पुराण की भी रचना की थी जिसकी समाप्ति शक संवत 1900 विक्रम संवत 1035 में हुई थी। ऊपर के संदर्भ में बताया गया है कि चामुंडराय ने गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाकर उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। गोमटेश्वर की प्रतिष्ठा का समय बाहुबली चरित में निम्न प्रकार बताया है, हम डायरेक्ट उसका अर्थ पढ़ते हैं। कल्कि संवत 600 में, विभव संवत्सर में, चैत्र शुक्ल पंचमी रविवार को, कुंभ लग्न सौभाग्य योग मृगशिरा नक्षत्र में चामुंडराय ने वेलगुल्ल नगर में गोमटेश्वर की प्रतिष्ठा कराई। भारतीय ज्योतिष की गणना के आधार पर विभव संवत्सर तथा चैत्र शुक्ला पंचमी रविवार को मृगशिरा नक्षत्र का योग 13 मार्च 981 को घटित होता है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी इसी दिन सम्यक घटित होती है, इसलिए मूर्ति प्रतिष्ठा का काल सन 981 विक्रम संवत 1038 होना चाहिए, यानी उन्होंने उस पर से कैलकुलेट किया है, क्योंकि वहाँ वो कल की संवत कुछ चल रहे थे और ये हम विक्रम संवत या ईस्वी सन में गिनते हैं। चामुंड पुराण में चामुंडराय ने मूर्ति स्थापना की कोई चर्चा नहीं की है, परंतु गोमटसार कर्मकांड में इसकी चर्चा की गई है। अतः चामुंड पुराण की रचना के पश्चात और गोमटसार की रचना के पूर्व मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है ऐसा जान पड़ता है। इतिहास में गंग नरेश राजमल्ल का समय विक्रम संवत 1031 से 1041 तक माना गया है। इनके सचिव या सेनापति होने से चामुंडराय का भी यही समय सिद्ध है और इन्हीं के समय नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं, इसलिए इनका समय विक्रम की 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। श्री नेमिचंद चंद्राचार्य रचित निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, एक ही ग्रंथ के दो भाग है, त्रिलोकसार, लब्धिसार और क्षपणासार। ये सभी ग्रंथ सानुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, अतः इनके परिचय की आवश्यकता नहीं समझता। अपने भी यहाँ पूरे त्रिलोकसार को छोड़कर सभी के यहाँ पर सामूहिक स्वाध्याय तो हो ही चुका है, ढूंढारी में भी किया था, फिर हमने अभी हिंदी में भी किया। उपर्युक्त ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में है। संस्कृत का अभ्यासी विद्वान इन रचनाओं का भाव सरलता से हृदयंगत कर लेता है। अब ये जो प्रस्तुत टीका ने ये जो टीका लिखी गई है उसके बारे में बता रहे हैं, उसके स्रोत, प्रेरणा स्रोत यानी उसकी प्रेरणा देने वाले श्री 105 आर्य का विशुद्धमती जी ने त्रिलोकसार की यह टीका आचार्य कल्प श्री श्रुत सागर जी महाराज की प्रेरणा से की है, जैसा कि उन्होंने अपने आद्य मिताक्षर शीर्षक वक्तव्य में स्पष्ट किया है। श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज यथा नाम तथा गुण है, अर्थात सचमुच ही श्रुत के सागर है। षटखंडागम आदि आगम ग्रंथों का आपने अच्छा अनुगम किया है। प्राकृत प्राकृत और संस्कृत भाषा का क्रमबद्ध अध्ययन न होने पर भी आप उसमें प्रतिपादित विषय को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहण कर लेते हैं। त्रिलोकसार का गणित एक गहन विषय माना जाता है, परंतु आपने अपनी प्रतिभा से उसे अच्छी तरह बैठाया है। वात्सल्य गुण के मानो आप मूर्ति ही है। संघस्त समस्त साधु और माताओं की दिनचर्या व प्रवृत्ति पर कठोर नियंत्रण रखते हुए भी वात्सल्य रस से उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। आप अभीक्षण ज्ञानोपयोगी है। आपके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति यदि अध्यवसायी हो तो शीघ्र ही आगम का ज्ञाता बन जाता है। अब टीकाकृति के बारे में लिखा है, विशुद्धमती के बारे में। अभी आपका अगला क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या है?
कुछ है नहीं, बस
इतना ही लिखे हैं, वो बहुत बड़ी है।
अच्छा, उसके बाद अच्छा, अभी मैं यहाँ पढ़ती हूँ। ये विशुद्धमती माता जी के बारे में इन्होंने लिखा है। आपके उसमें तो है, क्योंकि ये जो आपके में भी उसमें भी होगा। हाँ, जो जो हमने पहले जीरोक्स कराई थी उसमें है ये। त्रिलोकसार ग्रंथ की हिंदी टीका लिखकर जब इन्होंने देखने के लिए मेरे पास भेजी तब मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये लिखने वाले पन्नालाल साहित्याचार्य और इन्होंने विशुद्धमती माता जी के बारे में लिखा है। जब ये सागर के महिलाश्रम में पढ़ती थी और मैं इन्हें पढ़ाता था, यानी वो वहाँ के शिक्षक रह चुके पन्नालाल। आप अभी आ गए? हाँ ठीक, आगे की बात है। पन्नालाल जी की एक कृति हमने पढ़ी थी ना, मेरे ख्याल से लघु तत्व स्फोट, उन्होंने डायरेक्ट उसकी टीका लिखी थी, हमने उसमें से पढ़ा था शुरू में। पन्नालाल जी लिख रहे हैं, इसके अंत में उनका नाम है ना, यानी वो वहाँ सिखाने के लिए शिक्षक तरीके संस्कृत के विद्वान है वो। तब से इनके क्षोभ में अवनी अंतरिक्ष जैसा अंतर दिखा। अवनी अंतरिक्ष जमीन आसमान पृथ्वी को अवनी कहते हैं, जमीन को। मुझे लगा कि इनका क्षोभ तपश्चरण के प्रभाव से ही इतनी वृद्धि को प्राप्त हुआ है। वास्तविक बात है भी यही, द्वादशांग के विस्तार का अध्ययन गुरुमुख से नहीं हो सकता, वह तो तपश्चरण के प्रभाव से क्षोभशम में एक साथ आश्चर्यजनक वृद्धि होने से ही संभव हो सकता है। मुझे स्वयं भी त्रिलोकसार का गणित नहीं आता, परंतु इनके द्वारा निरूपित गणित की विविध रीतियां देखकर बहुत हर्ष हुआ। श्री दिगंबर जैन महिलाश्रम सागर की एक छात्रा सुमित्रा बाई आज विशुद्धमती माता के रूप में जन जन की पूज्य हुई और उसने त्रिलोकसार जैसे ग्रहण ग्रंथ की विस्तृत हिंदी टीका की यह देख मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आशा करता हूं इनके द्वारा और भी अनेक ग्रंथों की टीकाएं होंगी। श्री 61 अजीत सागर जी महाराज भी जो उपयुक्त माता जी के विद्या गुरु है और जिन्होंने संस्कृत प्राकृत भाषा के ग्रंथों में इनका प्रवेश कराया है, त्रिलोक सार की इस टीका को देखकर अपने परिश्रम को सफल मान रहे हैं। अभी इसके जो संपादन वगैरह जो है उसकी बात भी हम करेंगे। यहाँ पर सिद्धांत भूषण श्री रतन चंद जी मुख्तियार सहारनपुर और श्री चेतन प्रकाश जी पाटनी किशनगढ़ ने इस ग्रंथ के संपादन में भारी श्रम किया है। श्री रतन चंद्र जी मुख्तियार पूर्व भव के संस्कारी जीव है। इस भव का अध्ययन नगण्य होने पर भी इन्होंने अपने अध्यवसाय से जिनागम में अच्छा प्रवेश किया है और प्रवेश ही नहीं ग्रंथ तथा टीकागत अशुद्धियों को पकड़ने की इनकी अद्भुत क्षमता है। इनका यह संस्कार पूर्व भवागत है ऐसा मेरा विश्वास है। इनके बारे में जो किसी ने बताया था ना वो अभी बीमार है वो ये उसकी बात है। वो बेनाडा है वो नहीं है, वो अलग है। मुख्तियार, हाँ मुख्तियार ने वो कुछ वकीली करते थे, बाद में अपने आप उन्होंने सारा अध्ययन किया है। उनके बारे में कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ नहीं नहीं उनकी एक पुस्तक किसी ने दी थी ना अभी अपने जयपुर शिविर में रतन चंद जी मुख्तियार के उनके प्रश्नोत्तर के बारे में, वहाँ मैंने पढ़ा था। ये कोई प्रोफेसर आए थे यहाँ से सांगानेर के, याद आया क्या? और उन्होंने वो रतन चंद जी मुख्तियार की एक पुस्तक दी थी मेरे को। त्रिलोक सार के दुरूह सलोन को इन्होंने सुगम बनाया है। दुरूह ने कठिन और माधव चंद्र त्रैविद्य देवकृत ये भी मुनि दे, ये गोमरसार में बहुत बार इनका नाम आता है। हम कहते ना, हाँ माधव चंद्र की ये टीका है संस्कृत टीका। गोमरसार में भी उनका नाम बहुत बार आता है, माधव वंदित तो ऐसा आता है उसमें, या नेमी चंद्र आल्लाद कर माधव चंद्र, तो ये उनके उनको त्रैविद्य देव कहते हैं। जो छठ षटखंडागम के जो जानकार है उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, और मेरे ख्याल से तीन खंड के जो ज्ञाता है उसको त्रैविद्य देव ऐसा कुछ नाम, इसलिए उसको ऐसा नाम पड़ा है, कहीं पढ़ा था मुझे ऐसा लगता है। तो माधव चंद्र त्रैविद्य देवकृत संस्कृत टीका सहित मुद्रित प्रति में जो पाठ छूटे हुए थे अथवा परिवर्तित हो गए थे उन्हें आपने अपनी प्रति पर पहले से ही ठीक कर रखा था। पुनः और व्यावर से प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों से जब मैंने इस मुद्रित टीका का मिलान किया तब श्री मुख्तियार जी के द्वारा संशोधित पाठों का मूल्यांकन हुआ। यानी वो जो पढ़ते थे ना टीका उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि से उसमें जो कुछ करेक्शन किया था, जैसे हम कभी कभी कहते हैं वो प्राकृत में ऐसा होना चाहिए, ऐसे जो उन्होंने करेक्शन करके रखा था किसी दूसरे हस्तलिखित में वैसा ही मिला उनको। चलो पढ़े दे आगे। पाठ भेद लेने के बाद मुद्रित प्रति में इतना अधिक काट कूट हो गया कि उसे सीधा प्रेस में नहीं दिया जा सकता था। मुझे अवकाश नहीं था। श्री माताजी तथा मुख्तियार जी को संस्कृत का विशिष्ट अभ्यास न होने से संस्कृत की प्रेस कॉपी करना सुकर नहीं था, इसलिए असमंजस हो रही थी। इसी बीच में किशनगढ़ निवासी श्री चेतन प्रकाश जी पाटनी प्राध्यापक जोधपुर विश्वविद्यालय जोधपुर का पाठ भेद लेते समय निवाई में आगमन हुआ और उन्होंने पाठ भेद लेने में पर्याप्त सहयोग दिया। उनकी संस्कृत भाषा और गणित विषय संबंधी क्षमता देखकर मुझे लगा यह काम इनके द्वारा अनायास हो सकता है। प्रसन्नता की बात थी कि उन्होंने अपना सहयोग देना स्वीकृत कर लिया। श्री चेतन प्रकाश जी उन पंडित महेंद्र कुमार जी पाटनी काव्य तीर्थ किशनगढ़ के सुपुत्र है जो अब श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज से क्षुल दिशा ले चुके हैं। पंडित महेंद्र कुमार जी प्रकृति के शांत और स्वाध्याय के रसिक है। एक बार भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा सागर में आयोजित शिक्षण शिविर के समय लगभग एक माह तक हमारे संपर्क में रहे थे। श्री चेतन प्रकाश जी को स्वाध्याय की रसिकता अपने पिताजी से विरासत में मिली हुई है। मैं पाठ भेदों से युक्त अपनी मुद्रित प्रति इन्हें सौंप कर निवाई से वापिस चला आया। इन्होंने प्रेस कापी कर मुद्रण का काम शुरू कराया। इनके एक वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ही त्रिलोक सार का यह संस्करण सामने आ सका है। यानी इतने इतने लोगों का उसमें सहकार्य मिला है। अब ये प्रकाशन मुद्रण आकृति निर्माण वगैरह हम अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अपनी बात लास्ट में। श्री 108 आचार्य कल्प शुद्ध सागर जी महाराज की मुझ पर बड़ी अनुकंपा है। इनके माध्यम से संघ में यदि किसी ग्रंथ का प्रकाशन होता है तो वे बड़े स्नेह के साथ उस ग्रंथ की संभाल करने का आदेश मुझे देते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं अपने आप को गण्य मानता हूँ। त्रिलोक सार की प्रस्तावना के रूप में कुछ लिख देने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ तो उपर्युक्त पंक्तियां लिखकर अपने को धन्य समझता हूँ। और आगे लिखा है, महाराज ने बताया था कि बहुत लंबी प्रस्तावना नहीं किया, इसलिए वो चल अभी ये हो गया। अभी ये गणित की विशेषताएं हाँ, ये जो बहुत सारे पेजेस है ना, वो इंडेक्स के पहले हैं। अभी इंडेक्स के पहले सभी पुस्तकों में ये गणित की विशेषताएं यहाँ लिखी है। हाँ हाँ, वही है। अभी तो एक्चुअली हमने ये सारा हाँ, उसको पढ़कर आगे चलेंगे, क्योंकि हाँ हाँ ये सब आने वाली बातें हैं और अपना दोबारा पक्का हो जाएगा, ग्रंथ में तो आएगा ही। ये हम पढ़ रहे हैं, यहाँ मेरे में 28 पृष्ठ है, आप में 21। हाँ, त्रिलोक सार के गणित की विशेषताएं। तीन लोक के संपूर्ण प्रमेयों को, प्रमेय ने गेय, अपने गर्भ में धारण करने वाले इस त्रिलोक सार ग्रंथ में, अपने गर्भ में धारण करने ने उसमें इंक्लूड है, सारे गर्भित है। तीन लोक की रचना से संबंधित गणित का विवेचन विशद रूप से किया गया, यानी विशद ने विस्तार से किया, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता। सर्वप्रथम आचार्य ने मानम दुविहम लोगिग लोगुत्तरम एथ, यानी मान जो है, मान यानी माप, उसका मेजरमेंट। दुविहम यानी दो प्रकार का होता है, कौन सा, लौकिक और लोकोत्तर। गाथा 9 के द्वारा लौकिक और अलौकिक के भेद से मान दो प्रकार का बतलाया है। पंडित टोडरमल जी ने यही प्रकरण जीव कांड में भी इंक्लूड किया है, पर्याप्ति की प्ररूपणा में। वहां भी कभी कभी वो शब्द आते हैं, इसलिए वहां पर भी उन्होंने प्रसंग पाकर वहां लिख दिया है। यहां तो लिखा ही है उन्होंने त्रिलोकसार में। इसमें मान, उन्मान, अवमान, गणिमान, प्रतिमान और तत्प्रतिमान के भेद से लौकिक मान 6 प्रकार का और द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव के भेद से अलौकिक मान 4 प्रकार का कहा है। सामान्यतः द्रव्यमान से द्रव्य पदार्थ, यानी वो गिनना है ना कितने हैं, जैसे यहाँ कितने लोग बैठे हैं ऐसा हम कहेंगे, तो कहेंगे द्रव्यमान, यानी वहाँ संख्या गिनाई जाती है और उसमें एक एक भिन्न भिन्न है सत्ता वाला, उसको द्रव्यमान कहेंगे। क्षेत्रमान से प्रदेश, यानी सर्वाकाश तक, क्षेत्र में कितना क्षेत्र व्यापा है, पूरे आकाश द्रव्य का वो सबसे विस्तार बड़ा है ना, वहां तक के सारे क्षेत्र में आ जाते हैं। कालमान से समय, यानी उसका स्मॉलेस्ट यूनिट समय है, फिर अनेक समय की आवली वगैरह उसके सब कालमान में आ जाएंगे। और भावमान से अविभाग प्रतिच्छेदों का ग्रहण किया जाता है, किसी भी पर्याय की शक्ति नापना है तो भावमान में नापेंगे, उसका यूनिट है अविभाग प्रतिच्छेद। ज्ञान के दर्शन के अपने अपने अविभाग पर, और कर्मों में उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद, पुद्गल के जो गुण है उनके जो पर्याय है उनके अपने अविभाग प्रतिच्छेद, यानी वो ये भावमान है। जरा वो ले लेना वहां से अपना जीव कांड लेना, रेड बुक है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड निकाल, नीचे बड़ा रेड है ना वो, हाँ वो वाला। रेड है कि ब्लू, हाँ चलेगा। हाँ, ये छह प्रकार के जो लौकिक मान बताए ना, उसका मैं एक एक लाइन में अर्थ बताती हूँ। ये मैं जीवकांड जो हिंदी टीका है अपने द्वारा यहाँ से, हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जीवकांड की टीका प्रोडोमल जी ने लिखी हुई है, उसका मैं हिंदी अनुवाद उसको पढ़ रही हूँ। 217 पेज पर मान दो प्रकार का, एक लौकिक मान एक अलौकिक मान, जो अभी हमने पढ़ा था। वहाँ लौकिक मान छह प्रकार का है, मान, उन्मान, अवमान। यहाँ गणित मान उन्होंने लिखा था, यहाँ केवल गणिमान लिखा है। प्रतिमान और तत्प्रतिमान, अभी उसका एक एक का अर्थ देखते हैं। वहाँ पाई, माणे आदि मान जानना। पाई ने उस जमाने में पई थी, तीन पई का एक पैसा था, चार पैसे का एक आना था, हाँ, वो उसको मान कहेंगे। अभी हम नया पैसा, 10 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपीज, ये क्या है, ये मान हुआ। ताकड़ी का तौल यानी तराजू में तोलना, वजन, किलो, पाउंड आदि उन्मान है। ये मेरी भाषा में मैंने पाउंड वगैरह लिखा है ब्रैकेट में। चल इत्यादि का प्रमाण, चल यानी प्रवाही चीज, आपको लिखना है। देखो मान यानी जो अपनी जो चलन जो है ना, चलन समझते, हाँ, कॉइन्स वगैरह जो, वो मान है यानी पैसे, करेंसी जो, करेंसी। उन्मान किसको कहेंगे, जो वजन करते हैं जिसका, वो उन्मान हुआ, उसमें किलो पाउंड वगैरह सब उसमें आ जाएंगे। अवमान किसको कहना, प्रवाही चीजों का नाप, लीटर, आउंस वगैरह, उसमें जो कोई अपने यूनिट्स होगे उसमें ले लेंगे, एक दो वगैरह जो हम संख्या गिनते हैं वो गणित मान है, यानी उसको हम काउंटेबल फिगर्स, वो गणित मान। अब जो प्रतिमान है ना, चरिम तोला, चरिम है स्मॉलेस्ट, तोला है मासा, जैसे ग्राम मिलीग्राम है, उसको हम चरिम यानी वो प्रतिमान कहेंगे। घोड़े का मूल्य इत्यादि तत्प्रतिमान जानना, घोड़े का मूल्य इत्यादि, इसके पास इतने घोड़े, इतने हाथी है, आपके इतना कौन सी कार है आपके पास, हाँ 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 हाँ, कितने हैं, यानी उसके भाव से हम उनके पास कितना रुपया पैसा है उसको गिन सकते हैं। देखो क्षेत्रमान भी देखते हैं, अभी हम दिन अलौकिक मान, द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान। द्रव्यमान में जघन्य द्रव्यमान एक परमाणु, और उत्कृष्ट द्रव्यमान सभी पदार्थों का प्रमाण। क्षेत्रमान में जघन्य क्षेत्रमान एक प्रदेश, और उत्कृष्ट क्षेत्र संपूर्ण आकाश। कालमान में जघन्य कालमान एक समय, और उत्कृष्ट कालमान 3 काल के समय, सब कुछ वहां तक के सभी उसके बीच के भेद आ जाएंगे उसके अंदर। भावमान में जघन्य भावमान, सूक्ष्म निगोधिया, लब्धि अपर्याप्त का, लब्धि अक्षर ज्ञान, जिसको पर्याय ज्ञान कहेंगे, ज्ञान की अपेक्षा लेना है। उत्कृष्ट भावमान केवल ज्ञान, अभी ये हमने ज्ञान की अपेक्षा बताए, वो तो हर एक का अपना अपना भावमान अलग अलग होगा, क्योंकि हमने नाम 2 बार सुने परंतु उसका अर्थ हमें भाषित हो जाए तो अच्छा है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से द्रव्यमान 3 प्रकार का है, यानी वहां काउंट करना है ना, वैसे संख्याएं बताना है। वैसे जघन्य द्रव्यमान में एक परमाणु, और उत्कृष्ट में संपूर्ण द्रव्य समूह का ग्रहण होता है, ये बताया उन्होंने। ये द्रव्यमान की बात यहाँ बताई जो हमने उसमें से पढ़ी थी। मध्यम द्रव्यमान 2 प्रकार का है, अच्छा, जिसको हमने संख्यामान कहा था, संख्या प्रमाण और उपमा प्रमाण, जिसको संख्यामान और उपमामान कहते हैं। 2 से लेकर सारे संख्यात के भेद हैं, उत्कृष्ट संख्यात तक, और आगे असंख्यात के जो अनंत के भी हैं, और उसे में उपमा देकर जिसको समझाया जाता है, पल्य है, सागर है, पल्ले ने गड्ढे की उपमा है, सागर ने वो तो लवण समुद्र में उसका जो प्रमाण आता है उसकी उपमा देकर उसको समझाया है। हाँ, अंगुल है, सुचंगुल, घनांगुल, प्रतरांगुल, सब उसमें आ जाते हैं। तो देखिए मध्य द्रव्यमान 2 प्रकार का है, संख्या प्रमाण और उपमा प्रमाण, जिसको संख्यामान और उपमा मान भी कहते हैं। संख्यात असंख्यात और अनंत के भेद से संख्या तीन प्रकार का है। इसमें संख्यात एक ही प्रकार का है किंतु परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात, ये असंख्यात के तीन भेद हुए मूल में। तथा परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत के भेद से असंख्यात और अनंत तीन तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार संख्या प्रमाण के कुल एक, तीन और तीन सात भेद होते हैं। ये सातों ही स्थान जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा तीन तीन प्रकार के होते हैं, अतः संख्या प्रमाण के कुल 21 भेद हो जाते हैं। ये आगे गाथाओं में आने वाली बात है। एक में एक का भाग देने से या गुणा करने से कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती, अतः संख्या का प्रारंभ दो के अंक से होता है और इसीलिए जघन्य संख्या का प्रमाण दो है। तीन, चार, पांच आदि से लेकर एक कम उत्कृष्ट संख्यात पर्यंत के संपूर्ण भेदों को मध्यम संख्यात और एक कम जघन्य परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात कहते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात में एक मिला दो तो जघन्य परिता संख्यात हो जाता है। उत्कृष्ट संख्यात और जघन्य परिता संख्यात के प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, इन चार कुंडों की कल्पना की गई है। ये चारों कुंड गोल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है जीव कांड में, इसलिए अभी कुछ चक्कर विक्कर तो नहीं आएंगे हैं। पहली बार पढ़ते तो बहुत तकलीफ होती है, क्या है इनका व्यास, यानी ये गोल कुंड करना, गड्ढा खड्डा गोलाकार है ना, व्यास 100,000 योजन और उच्छेद यानी उनके डेप्थ 1,000 योजन प्रमाण है। लाख योजन उसका डायमीटर है और 1,000 योजन उसका उसकी डेप्थ है। प्रथम अनवस्था कुंड में गोल सरसों का प्रमाण प्राप्त करने के लिए अब ये क्या करना है, ये चार पहले समान कुंड करना। एक का नाम है अनवस्था कुंड, फिर शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। 100,000 योजन वाले सब बनाए, अब ये सरसों गोल भर देना और फिर उसमें ऐसे रास करना ऊपर। आपने देखा वो चावल भरते कैसे भरते, ऊपर ऐसा ढेर करते हैं ना इस तरह से। तो कहते हैं उसका हमको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, और उसके द्वारा उसमें कितने सरसों आएगी उसका भी माप निकालते हैं, क्योंकि ये सब बुद्धि में ही करना है। देखो, प्रथम अनवस्था कुंड में गोल सरसों का प्रमाण प्राप्त करने के लिए व्यास व परिधि का अनुपात स्थूल रूप से 3 गुना और सूक्ष्म रूप से 10 का वर्गमूल बतलाया है। परिघ सरकमफरेंस, व्यास यानी डायमीटर, तो डायमीटर से राउंड अबाउट 3 गुना होता है, स्थूल दृष्टि से 3 गुना होता है। हम कहते हैं ना 22 सप्तमों से गुना करते हैं, तो हाँ 22 सप्तमोश क्या है, ये पाए पाए वो कैसे निकाला, तो कहते वो 10 का वर्गमूल है। यहाँ लिखा है देखो, सूक्ष्म रूप से 10 का वर्गमूल बतलाया है, स्थूल रूप से 3 गुना करना और सूक्ष्म रूप से 22 सप्तमोश यानी 7 × 21.1/7। हाँ, वर्तमान गणित में यहाँ लिखा ही है, इस अनुपात को पाई कहते हैं, पाई जिसको कहेंगे, जिसका संकेत चिन्ह वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना ऐसा है, जो होंगे 22 सप्तमोश के पाई कहते हैं। परिधि को चौथाई व्यास से गुणित करने पर, यानी हाफ द रेडियस, डायमीटर का चौथा भाग यानी रेडियस का हाफ, यानी परिघ जिसको हम मराठी में कहते हैं, और यहाँ परिधि का सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का हाफ या डायमीटर का चौथा भाग, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। कोई भी गोल चीज है उसका क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर होती है तो क्या करते हैं हम, ये दो का आपस में गुणा करते तो पूरा क्षेत्रफल मिलता है। अब गोलाकार का कैसा निकालना, तो जो डायमीटर है उसका चौथा भाग करो और वो उसको परिधि से गुणा करो तो क्षेत्रफल मिल जाता है, अर्थात व्यास, हाँ परिधि, जिसको हम मराठी में परिघ कहते हैं। अर्थात व्यास, व्यास के लिए दो अर्धव्यास किए, दो अर्धव्यास है ना, अर्धव्यास है ना त्रिज्या, त्रिज्या को दो गुना करना, डायमीटर त्रिज्या एक हाफ है, हाफ डायमीटर इज इक्वल टू त्रिज्या, तो दो बार हाफ डायमीटर लेना, इसे यहाँ लिखा ब्रैकेट में क्या लिखा है, दो अर्धव्यास, वही तो, इसलिए उन्होंने कहा कि आगे उनको वो तो कैलकुलेशन के लिए बताया। पहले उन्होंने सरकमफेरेंस कैसा निकाला, व्यास मल्टीप्लाइड बाय पाई, यहाँ लिखा ना, देखो पहले क्या लिखा था उन्होंने, व्यास और परिधि का अनुपात स्थूल रूप से त्रिगुणा है, ये बताया था ना। तो पहले में पहले व्यास को, व्यास के लिए दो अर्धव्यास लिखा है, दो बार त्रिज्या, दस का वर्गमूल यानी जिसको हम पाए कहते हैं उससे गुणा करेंगे तो हमको परिघि मिली, इनटू व्यास का चतुर्थांश यानी दो व्यास का, दो अर्धव्यास का चतुर्थांश किया। अभी इसको क्या करना है, हमको किससे गुणा करना है, जो सरकमफेरेंस आया उसको व्यास के चौथे भाग से गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। फिर से पार्टी ले लो, है क्या, इसलिए दो अर्धव्यास इसलिए लिया, कैलकुलेशन पीछे के भाग में होगा, नहीं नीचे बैंड करके देखो पीछे कहीं होगा, हाँ अरे वाह, अब व्यास कुछ भी ले लो ना, चार ले लो, चार हुआ व्यास, आधी उसकी त्रिज्या हुई, अब उसका परिघ निकालना है, तो व्यास मल्टीप्लाइड बाय 22 सप्तमांश जिसको हम कहेंगे और जिसको इस तरह से लिखते हैं, ये पाई का साइन है, तो हम यहाँ 10 का यानी स्क्वायर रूट 10 ऐसा उन्होंने लिखा है, अब ये तो क्या मिला हमको, ये परिघि सरकमफेरेंस मिला, व्यास यानी डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, अंग्रेजी में पढ़ी होगा क्या है, पढ़ी गुजराती, हाँ तो व्यास को हमने 22 सप्तमांश से गुणा किया तो हमें परिघ मिला, यहाँ तक बात है। अब परिघ को किससे गुणा करने पर क्षेत्रफल मिलेगा, हमको गोल का क्षेत्रफल निकालना है, ये चार है और हमें ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालनी है पूरी। अब ये जो हमें परिघ मिला, परिघ को व्यास के चौथे भाग से गुणा करना, यानी व्यास हमारा चार है उसका चौथा भाग, इससे गुणा करना है, दिख रहा है क्या, हाँ अच्छा वो, हाँ उसमें है क्या आपका, हाँ तो देखो हमने क्या किया, ये व्यास है उसको 10√10 यानी 22 सप्तमांश से गुणा किया, हमें परिघ मिला, परिघ को इसी को 22 सप्तमांश कहो, 10 का वर्गमूल
है,
हाँ ये सूक्ष्म है जो उन्होंने अपने ग्रंथों में 10 का वर्गमूल बताया उसको, और वर्गमूल यहाँ बताया है, अभी 3 का वर्ग 9 होता है,
10 का वर्गमूल
और 10 का वर्ग 3 से थोड़ा ज्यादा होगा है ना, तो 22 सप्तमांश हो जाए, 7 × 21 और 1 सप्तमांश, तो यहाँ तक बात हुई। अब ये व्यास को चौथा भाग से भाग दे दो, चार से भाग दे दो, और ये सरकमफेरेंस को इससे गुणा करो तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा,
सर्कुलर का,
हमें गोल कोई क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपके घर के एरिया कैसे काउंट करते हैं? दो भुजाओं को गुणा करते हैं। अब यहाँ दो भुजाएं नहीं है, एक है सरकमफेरेंस और एक है व्यास के आधे का आधा, यानी हाफ त्रिज्या जिसको हम कहेंगे, व्यास का चौथा भाग, उससे सरकमफेरेंस को गुणा करना है। तो हमने क्या किया, सरकमफेरेंस निकालने के लिए व्यास को 22 सप्तमों से गुणा किया, सरकमफेरेंस मिला, और उसको व्यास के चौथे भाग से गुणा किया, तो गोल का एरिया मिला क्षेत्रफल। यहां तक बात ख्याल में आई? अब यहां उन्होंने चार लिखने के बदले दो अर्धव्यास लिखे, चार के बदले दो गुना दो लिखा, इतना ही, कुछ नहीं। और यहां पर भी दो अर्धव्यास लिखे और डिवाइडेड बाय चार लिखा, एक अर्धव्यास है नहीं, त्रिज्या हम जिसको कहेंगे। अभी इसके लिए उन्होंने क्या लिखा, अभी इसको इकट्ठा कर दिया, ये दो अर्धव्यास यहां थे, यहां दो अर्धव्यास डिवाइडेड बाय चार थे, अर्धव्यास का वर्ग किया और मल्टीप्लाइड बाय सरकमफेरेंस, ये अर्धव्यास गुणा अर्धव्यास, ये दो अर्धव्यास, ये दो अर्धव्यास, दो अर्धव्यास का अर्धव्यास का वर्ग हो गया। देखो ये दो अर्धव्यास है, दो बार अर्धव्यास, अभी हमने चार फिगर लिए ना, इसलिए घोटाला हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार के बदले आपको बड़ी संख्या ले लेंगे हम, 16 ले लो ना, क्योंकि वो दो गुना क्या है, वो दो त्रिज्या है, ये इसमें कंफ्यूजन है। अब 16 को यहाँ लिखना है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 22 सप्तमांश करेंगे हम, उसके बदले दो गुना आठ करेंगे, दो त्रिज्या हुई ना, दो अर्धव्यास हुए, यहाँ पर भी दो अर्धव्यास करेंगे। अभी ये दो संख्या है और ये अर्धव्यास है, तो ये दो गुना, ये नीचे का चार है उसमें गया और इससे भी उसको एक बार निकला, तो ये त्रिज्या गुना 22 सप्तमांश रह गया, त्रिज्या का वर्ग गुना 22
सप्तमांश,
यानी दो त्रिज्या गुना 22 सप्तमांश डायमीटर आया और त्रिज्या का वर्ग गुना 22 सप्तमांश ये एरिया आ गई, क्षेत्रफल आ गए, यही लिखा उन्होंने उनकी आगे के पेज पर, अर्धव्यास का वर्ग इनटू पाई, यानी वो 22 सप्तमांश। पाई आर स्क्वायर, उसके आगे दो क्यों लिखा, दो पाई आर स्क्वायर लिखा है मेरे में,
हम लोग दो दो पाई आर स्क्वायर,
आपके भी अपनी नई कॉपी है, पाई आर स्क्वायर चाहिए,
पाई आर स्क्वायर चाहिए, दो निकालना है,
इसमें दो निकाल देना, जो जीरोक्स कॉपी है पूरा है, अकेले पाई आर स्क्वायर है ना, हाँ वो दो वो वहां से निकालनी है, टू पाई आर स्क्वायर है, उसके बदले पाई आर स्क्वायर करना। इस क्षेत्रफल को वेध से गुणा करने पर घनफल प्राप्त होता है, वेध है उसकी हाइट, जैसे हमारे पास सिलेंडर है, अभी हमको ये गोल क्षेत्र का निकालना है ना, तो हमने क्या लाख योजन उसका डायमीटर था और डेप्थ उसकी कितनी थी 1000 योजन, उसको वेध कहेंगे, वेध हाइट को भी कहेंगे या डेप्थ को भी कहेंगे, जो जैसे हमको सिलिंड्रिकल एरिया, कोई सिलेंडर का हमको घनफल निकालना है तो पहले सिलेंडर वाला जो राउंड है उसका हमने एरिया निकाली और उसको हाइट से गुणा कर दिया। गोल गेंद का घनफल, अभी ये तो सिलेंडर का तो निकाल सकते हैं, अभी जो गोल है गेंद जैसा उसका कैसे निकालना, समघनाकार के घनफल का 9/16 होता है, ये आने वाला विषय है। इसी विषय को पृष्ठ 26 से वासना द्वारा सिद्ध किया गया है। अब ये कैसे निकालना क्या, वो आगे आने वाला विषय है। हमने जो वासना द्वारा, यानी अभी उसमें उसका कुछ अर्थ अलग होता है। नहीं, वो समघनाकार के घनफल का, समघनाकार जो लिखा है ना, उसकी बात आगे आएगी। ये सभी गाथाओं में आने वाली है, ये गाथा 19, गाथा 22, आगे आने वाली गाथाओं में ये सब विषय हो जाएगा। हमने चार कुंड बनाए थे, याद है ना? एक अनवस्था कुंड है, बहुत पहला भी अभी
अभी अभी याद है, शला का, प्रतिशला का मार्ग।
हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, अभी जो हमने नाम पढ़े थे ना, वही वही की बात है, उसी की बात चल रही है। हाँ, ये आपको चित्र बताती हूँ, हमारे इसमें है, देखो ये अनवस्था कुंड है ना, ये जो अपने पास जीव कांड है उसका पेज नंबर कौन सा है, वो
218।
हाँ, हिंदी जो है, देखो प्रथम अनवस्था कुंड की शिखा का घनफल, शिखा ने भी उसके ऊपर जो रास बनाई, पहले तो सिलेंडर का घनफल निकाला हमें, अभी वो ऊपर जो शंकु जिसको कहेंगे कोण, तो उसका अभी हमको घनफल निकालना है। तो कहाँ गया, हाँ, शिखा का घनफल परिधि के 11वें भाग को परिधि के 6ठे भाग के वर्ग से गुणित करने पर प्राप्त होता है। देखो उस जमाने में गणित कितना सूक्ष्म था, और इसे भी वासना द्वारा सिद्ध किया गया। इस जम्बूद्वीप सदृश प्रथम अनवस्था कुंड को जम्बूद्वीप सदृश क्यों कहा, 1,00,000 योजन उसका डायमीटर है इसलिए, परंतु यहाँ डेप्थ भी है, यहाँ तो केवल डायमीटर को जम्बूद्वीप सदृश कह दिया। गोल सरसों से शिखाऊ भरने पर, शिखाऊ ने सिघाऊ जिसको कहेंगे, उसकी रास करने पर सरसों का प्रमाण 46 अंक प्रमाण प्राप्त होते हैं, और आगे 4/11 भी लिखा है लास्ट में, है ना? इसके बाद जगन्य परिता संख्या के प्रमाण को प्राप्ति तक का संपूर्ण विषय पृष्ठ 34 से 40 तक द्रष्टव्य है। यहाँ केवल दृष्टांत दर्शाया जा रहा है। मान लो प्रथम अनवस्था कुंड 40 अंक प्रमाण संख्या के स्थानीय 10 सरसों से भरा था, मैं तो हमेशा चार का उदाहरण देती हूँ पढ़ाते समय, अतः बढ़ते हुए व्यास के साथ 10 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर एक बार शलाका कुंड भरेगा, तब एक सरसों का दाना प्रति शलाका कुंड में डाला जाएगा। क्या करना है, पहली शलाका कुंड अनवस्था भर देना, जब पूरा भर जाएगा तो एक दाना शलाका में डाला। फिर वो रीता करना अनवस्था कुंड, अभी वो उन दानों का क्या करना, चार दाने थे तो एक जम्बूद्वीप में, एक लवण समुद्र में, फिर ऐसे करते करते चार में चार गए। अब जहां पर अंतिम दाना पड़ गया उसकी जो आउटर डायमीटर है उसके बीच वाले से अभी उसमें इंक्लूड करना, उसका जितना डायमीटर होगा वो भरना अभी सरसों से, सेकंड टाइम वाला अनवस्था कुंड इतना होगा वो भर देना, फिर उसमें से एक 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 आगे के कुंडों में डाल देना। दूसरी बार भरा तो दूसरी सरसों शलाका कुंड में डाल दी, फिर क्या करना, दूसरी बार भरा हुआ उसके दाने डालते जाना आगे आगे आगे, एक में एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर, जहां तक समाप्त हो जाएगी। अभी वो कितने 40 अंक प्रमाण, तो ये जो संख्या है उतने द्वीप सागर हो जाएंगे, तो उसका आउटर डायमीटर कितना बड़ा होगा, फिर वो सरसों से भर देना। तो तीसरी बार भरा तो तीसरी शलाका कुंड में तीसरी खाली एक सरसों आई, तो एक बार शलाका कुंड भरने के लिए, या अभी वो 10 बार उन्होंने बोला तो 10 बार अनवस्था कुंड हो गए, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कितना बड़ा होगा, तब जाके शलाका भरा, शलाका पूरा भरा तब प्रतिशलाका में एक सरसों आई, प्रतिशलाका में दूसरे
संख्यात में है ना एक्चुअली
ये तो, हाँ अभी संख्यात में है,
किसका माप है
जगन्य असंख्यात का, क्योंकि हमको एक पूरा शलाका भरेगा तो प्रतिशलाका में एक भरेगी, उसी पद्धति से अनवस्था बढ़ाते जाना, तब दूसरी बार शलाका भरेगा तो प्रतिशलाका में एक आई, तीसरी बार शलाका भरेगा तो प्रतिशलाका में एक आई सरसों, इस तरह से प्रतिशलाका पूरी भर जाएगी तब महाशलाका में एक सरसों आई। अब उसके लिए फिर कितनी बार ये कुंड बनना है, तो जितनी 40 अंक प्रमाण है उसका घन करो इतनी बार तो अनवस्था कुंड होगे, तो एक से दूसरा दूसरे से तीसरा कितना बढ़ता चला जाता है। हाँ नहीं 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 इतने कहाँ है, अरे वो तो जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण आएगा, अरे वो तो पल्य प्रमाण है, उद्धार पल्य प्रमाण होते हाँ 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य है, ये जघन्य असंख्यात तो कहाँ का रह गया, उसके आगे वो सारे असंख्यात के भेद है ना पल्य, द्विरूपर्ग धारा में पल्य नाम की जो संख्या थी, देखो देखो आउले में कितने होते हैं जघन्य युक्ता संख्यात, अभी तो हम जघन्य परिता संख्यात के पास आ गए, जघन्य परिता संख्यात रेस टू जघन्य परिता संख्या जघन्य युक्ता संख्यात, आउली में असंख्यात का प्रमाण आया, उसके आगे कितने ही स्थान वर्ग स्थान जाएंगे तब पल्ले का प्रमाण आएगा, आउली तो बहुत छोटा प्रमाण है, और ऐसे पल्ले में 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य, वो भी व्यवहार पल्ले की बात आती है फिर उद्धार पल्ले की आती है, यानी वो कितना बड़ा प्रमाण हो जाता है, इतने द्वीप सागर है। हाँ एक राज्य, इतने तो संख्या है, जैसे चार द्वीप और समुद्र है, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 16,00,000 4,00,000 8,00,000 इन सबकी टोटल करनी है, और वो एक बाजू के हो गए, उसको दुगुना करना है तब पूरा ही संख्या है, तो ये 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले इतनी तो संख्या है। हाँ तो अब ये 1+2+3 इस तरह से करते जो आधे से शुरू कर, तो इतना सारा मिलकर उनकी टोटल करेंगे तो आधा राजू हो जाएगा, एक साइड का सेंटर से एक बाजू का हो जाएगा, तो राजू का प्रमाण कितना बड़ा होगा। यहाँ तो यही बताते कितने कुंड करने पड़ेंगे, तो प्रतिशला का भरने के लिए तो देखो यहाँ लिखा है ना, फिर मान लो से फिर पढ़ेंगे, प्रथम अनवस्था कुंड 10 सरसों से भरा था, अतः भरते हुए व्यास के साथ 10 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर एक बार शलाका कुंड भरेगा, तब एक सरसों का दाना प्रतिशलाका के कुंड में आएगा। ये बाद में वो कहाँ डालना क्या उसने बात नहीं उठाई, कितनी बार बनते उतनी बात की। इसी प्रकार वृद्धिंगत व्यास के साथ 10 का वर्ग अर्थात 100 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर 10 बार शलाका कुंड भरेगा, तब एक बार प्रतिशलाका कुंड भरेगा, तब एक दाना महाशलाका कुंड में डाला जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यास के साथ 10 के घन अर्थात 1,000 अनवस्था कुंडों के बन जाने पर 10 के वर्ग अर्थात 100 बार शलाका कुंड भरेगा, तब 10 बार प्रतिशलाका कुंड भरेगा, एक बार महाशलाका कुंड भरेगा। ये तो है ना कितने बार करना पड़ेगा इतना ही उन्होंने बताया, पर दूसरी बार का कितना बड़ा होता है उसका क्या करना है? इस प्रकार इस अंतिम अनवस्था कुंड में शिखा सहित गोल सरसों की जितनी संख्या प्राप्त होती है, ऐसे करते करते कितने बार अनवस्था कुंड बने, यहाँ तो 1,000 बार हुए, एक्चुअल में कितने होंगे 40 अंक प्रमाण का घन करो इतनी बार अनवस्था कुंड बनेंगे, और एक से दूसरा दूसरे से तीसरा कितना बड़ा होगा, ऐसे जो अंतिम अनवस्था कुंड होगा उसमें जितनी सरसों समा जाएगी, तो कहते वही संख्या जघन्य परिता संख्या की है, और उसमें से एक अंक कम कर देने पर उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण प्राप्त होता है। ये तो जघन्य परिता संख्या का प्रमाण आया, अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आएगी उसका प्रमाण है जघन्य परिता संख्या। उसमें से एक कम करो तो उत्कृष्ट संख्यात कहेंगे, उत्कृष्ट संख्यात में एक ऐड करो तो जघन्य परिता संख्यात आएगा। ऐसे हर जगह ऐसा ही लेना, कैसे जघन्य युक्ता संख्यात में से एक कम कर दो उत्कृष्ट परिता संख्यात आ जाएगा। कहीं पर भी ऐसा ही आगे वाला जो भेद है वो एक ऐड करने से मिल जाता है, यही यहाँ लिखा है। यहाँ लिखा ना इसी प्रकार अन्यत्र भी आगे के मूल भेद के जघन्य भेदों में से एक घटा देने पर पिछले मूल भेद का उत्कृष्ट भेद प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ समझना, जघन्य परिता संख्यात में से, अभी आप उत्तर देंगे, जघन्य परितानंत में से, संख्यात नहीं कहा, जघन्य परितानंत में से एक कम कर देने पर क्या मिलेगा?
असंख्यात
वाला, हाँ हाँ बहुत अच्छा, उत्कृष्ट असंख्याता संख्या, बरोबर। तथा जघन्य उत्कृष्ट भेदों के बीच के सभी भेद मध्यम कहलाते, मध्यम लिखा है परंतु वो एक भेद नहीं है,
सभी भेद,
उसमें कितने ही भेद हो जाते हैं। अतः जघन्य का स्वरूप ही लिखा जाता है। आगे देखते हैं, जघन्य युक्ता संख्यात, यह हमने बहुत बार पढ़ा भी है, आवली का प्रमाण है। उसके लिए क्या कहते हैं, हम विरलन करते हैं, किसी संख्या का विरलन करना है, एक 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 में बिखेर देना, उसमें उसी की देय राशि बनाने ने हर एक के टॉप पर वही संख्या लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे, यही लिखा भी आवली का प्रमाण, जिसको एक आवली कहते हैं। जघन्य परिता संख्यात का विरलन कर प्रत्येक एक एक अंक के ऊपर जघन्य परिता संख्यात ही देय देकर परस्पर गुणा करने से, इसमें हमारे बहुत सारे लेटर्स कट हो गए हैं, करने से जो लब्ध उत्पन्न होता है वही जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या है जो आवली सदृश है, आवली के समान है। अर्थात जघन्य युक्ता संख्यात की जितनी संख्या है उतने ही समयों की एक आवली होती है। ये तो सरल है ना, समय, हाँ हम कहते हैं ना जप रेस टू जप, ये अपनी भाषा में जघन्य युक्ता संख्यात अर्थात आवली का वर्ग करने पर, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रतरावली कहेंगे, प्रतर एने स्क्वेर, जघन्य असंख्याता संख्यात का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ वो रेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट जघन्य युक्ता संख्यात मल्टीप्लाइड बाय जघन्य संख्यात इज इक्वल टू जघन्य असंख्याता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात राशि के शलाकात्रय निष्ठापन की समाप्ति होने पर, अब ये शलाकात्रय क्या है वो वहीं से पढ़ेंगे, हाँ। जो मध्यम असंख्याता संख्यात राशि उत्पन्न हो उस महाराशि में, यानी अन्य असंख्यात की संख्या वाली राशि है उसमें मिलाना है, कौन कौन सी, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, एक जीव के असंख्यात प्रदेश, लोक के असंख्यात प्रदेश, ये तो सारे लोक प्रमाण असंख्यात है, ये चार राशियां, लोक से असंख्यात गुणा, प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण जिसको असंख्यात लोक कहेंगे, और असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अप्रतिष्ठित ही काम है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक का जीवों का प्रमाण मिलाने से जो राशि उत्पन्न होगी, यानी जो मध्यम असंख्यात असंख्यात वाली जो मध्यम महाराशि है उसमें ये छह राशि और मिलाना, जो राशि उत्पन्न होती है उसका पुनः शलाकात्रय निष्ठापन करना चाहिए। ये शलाकात्रय बाद में देखेंगे, नहीं तो आज ये सब सुनेंगे तो घोटाला हो जाएगा ना, कल से बंद करोगे आप आना। उसके बाद उत्पन्न होने इसमें वो पहले महाराशि में ऐड करना, शलाका त्रय करके जो आई है वो शलाका त्रय निष्ठापन करना ऐसे आए थे ना पहले। मिला ना शलाकात्रे बहुत बड़ी संख्या आती है। देखो उसके बाद उत्पन्न होने वाली महाराशि में यानी वो छह संख्या ऐड की फिर उसका शलाकात्रे किया जो बहुत बड़ी संख्या आई उसमें 20 अभी ये जो 20 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्पकाल के समय अभी एक सेकंड में कितनी हजारों कोड़ाकोड़ी आवली और उसमें एक एक में कितना तो कोड़ाकोड़ी सागर में समय कितने हो गए वो संख्या उसमें डालना। इनसे भी असंख्यात लोग गुणे उससे भी असंख्यात लोग गुणा है क्या है स्थिति बंध अध्यवसान स्थान इससे भी असंख्यात गुणे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान और इनसे भी असंख्यात गुणे योग के यानी मनोवचन काय योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप ये चार राशियां मिलाकर पूर्वोक्त प्रकार पुनः शलाकात्रय निष्ठापन करने से जो महाराशि उत्पन्न होती है वही जघन्य परितानंत का प्रमाण है। अब यहाँ ऐसा ही है वो जघन्य परितानंत रेस्ट जघन्य परितानंत जघन्य युक्तानंत होगा जघन्य युक्तानंत इंटू जघन्य युक्तानंत जघन्य अनंतानंत होगा यही बात अभी यहाँ होगी। देखो इस जघन्य परितानंत का विरलन कर प्रत्येक एक अंक पर इसी को देय देकर परस्पर गुणा करने से जघन्य युक्तानंत की प्राप्ति होती है। इस जघन्य युक्तानंत की जितनी संख्या है उतनी संख्या प्रमाण ही अभव्य राशि है। ये अभव्य कितने हैं तो जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। अरे उससे अनंत गुणा तो भव्य राशि है। हाँ हाँ है ना जगन्य युक्तानंत का वर्ग करने से जगन्य अनंतानंत प्राप्त होता है। ये तो जगन्य युक्तानंत है अभी उसका वर्ग करने से अनंतानंत में गए। इस महाराशि का पूर्वोक्त प्रकार शलाकात्रय निष्ठापन करने से जो मध्यम अनंतानंत उत्पन्न हो उसमें संपूर्ण जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध राशि सिद्ध राशि कितनी सब जीवों का अनंत भाग इससे अनंत गुणी निगोद राशि संपूर्ण वनस्पति काय राशि संपूर्ण में निगोद प्लस प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सब कुछ आ गए जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि ये तो हम देखे ना द्विरूप वर्ग धारा में जीव राशि को वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग अनंत अनंत बार करो तो पुद्गल राशि आ गई उससे भी अनंत गुणे तीनों काल के समय और काल राशि से अनंत गुणी अलोकाकाश की प्रदेश राशि अर्थात अनंत स्वरूपी छह राशियों का क्षेपण करने से जो योग फल ने उसकी जो एडिशन की है ना उसकी टोटल उसमें डालना मिला देना ऐड करना जो योग फल उत्पन्न हो यानी जो टोटल होगी उसका पुनः शलाकात्रय निष्ठापन करने से उत्पन्न होने वाली महाराशि में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद मिलाना। देखो क्या कहते हैं अभी एक किसी गुण के अविभाग प्रतिच्छेद वो तो बहुत है क्योंकि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो असंख्यात थे यहाँ उसके गुण के अविभाग प्रतिच्छेद लिए वो अनंत होते हैं। हाँ होने वाली राशि का पुनः शलाकात्रय निष्ठापन करने से जो महाराशि रूप लब्ध प्राप्त होगा वह भी केवल ज्ञान के बराबर नहीं है। अतः केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में से उक्त महाराशि घटा देने पर जो उपलब्ध उपलब्ध हो उसे वैसे का वैसा उसी में मिला देने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त होता है। ये ऐसा लिखते हैं, उसको माइनस करो, उसी में ऐड कर दो, क्योंकि उसके किसी संख्या में या उसके किसी मल्टीप्लीकेशन में उसको नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसा कहते हैं। इतनी वो बड़ी अनंतानंत राशि है,
केवल ज्ञान की।
हाँ, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे बड़ी संख्या है। हाँ, उस उत्कृष्ट अनंतानंत, उसको पार करके और कोई भी है ही नहीं संख्या। देखो, जितने विषयों को श्रुत ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे संख्या कहते हैं, जिसको हम संख्यात भी कहें। हाँ? उससे बाहर जितने अधिक विषयों को अवधि ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे असंख्यात कहते हैं, और अवधि ज्ञान के विषय से बाहर यानी उससे बढ़कर जितने विषयों को केवल ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे अनंत कहते हैं। ये गाथा 52 में बताए। मात्र केवल ज्ञान का विषय होने से अर्धपुद्गल परिवर्तन को भी अनंत कहा गया है, किंतु यह सक्षय अनंत होने से परमार्थतः अनंत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? यह अवधि ज्ञानी वो अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल को युगपत प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है, केवल ज्ञानी का वो विषय, इसलिए उसको अनंत कहा। फिर भी वो कहते सक्षय है, क्योंकि हम अर्ध पुद्गल परावर्तन है, उससे दो गुना परावर्तन है, ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन जीव ने किए, ऐसा जब कहेंगे तो उसको अगर वो अक्षय होगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो एक समाप्त करके दूसरा पुद्गल परावर्तन कैसे शुरू हो सकता है? इसलिए ये सारे जो कैसे सक्षय अनंत है। त्रिलोक सार ग्रंथ में गाथा 53 से 90 तक 14 धाराओं का वर्णन है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता है। ये हमने इसकी बातें कल देखी थी ना, 14 की 14 आपको बताई थी। कल हमने देखा सर्वधारा 1 से लेकर केवल ज्ञान तक, समधारा बताई थी, विषम धारा बताई थी, कृति धारा अकृति धारा, घन धारा अघन धारा, कृति मातृका अकृति मातृका, घन मातृका अघन मातृका, फिर वो 3 द्विरूप धाराएं बताई थी। यही बात यहाँ सब बताई। देखो 32 पेज पर आते जा रहे, हाँ? नहीं नहीं, आगे नेक्स्ट पेज पर आते। हाँ, मेरा 32 है ना, मैंने एक पेज ये 14 धारा को मैंने टाल कर आगे बढ़ी, कल हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। देखो, जिसको हम उपमा मान कहते हैं ना, मिला गाथा 92 में पल्य सागर सुच्चंगुल प्रत्रांगुल, ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ये है, ये कोड़ा कोड़ी लिखा है ना, उसके ऊपर होगा।
32 नंबर तो हम लोग का ऊपर ही है।
32 नंबर
कौन सा नंबर है?
25
नंबर पे। हाँ, फर्स्ट लाइन। तो देखो, गाथा 92 में पल्य सागर सुच्चंगुल, ये केवल अंगुल लिखो या सुच्चंगुल, सुच्चंगुल है ना लीनियर लाइन में सिंगुलर, और प्रत्यंगुल उसका स्क्वायर, और घनांगुल नहीं उसका घन। सुच्चंगुल प्रत्रांगुल घनांगुल जगत श्रेणी, जगत श्रेणी का अर्थ है 7 राजू इन सिंगल लाइन, उसमें जितने प्रदेश है उस संख्या को लेना है। जगत प्रतर है उसका स्क्वायर, 7 राजू × 7 राजू, उसमें जितने प्रदेश होगी उसको नापता है। और लोक यानी जिसको जगत घन भी कहेंगे, 7 × 7 × 7 343 घन राजू। इन 8 उपमा प्रमाणों के नाम दर्शाए गए हैं। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले के भेद से पल्ले 3 प्रकार का है, एक योजन लंबे, एक योजन चौड़े यानी डायमीटर वाला, और एक ही योजन गहरे कुंड को लंबा चौड़ा यानी स्क्वायर किया उन्होंने, अच्छा गोल नहीं किया। विशिष्ट मेढ़े के अविभागी रोम खंडों से भरने पर, विशिष्ट मेढ़ा माई मालूम हमको उत्तम भोग भूमि का न्यूबॉर्न वाला, इसलिए वो तो आएगी संयुक्त विशेषताएं, यहाँ तो उन्होंने शॉर्ट में लिखना था। उन रोम खंडों के द्वारा व्यवहार पल्ल्य प्राप्त होता है तथा प्रत्येक 100 वर्ष बाद एक एक रोम निकालने पर जितने काल में संपूर्ण रोम समाप्त हो उतने काल के समयों की संख्या व्यवहार पल्ल्य के समयों की संख्या है, यानी वो भी असंख्यात ही होती है। रोम खंड वहां संख्यात थे, संख्यात से भरेंगे और 100-100 साल के बाद एक एक रोम खंड निकालेंगे, तो जितनी रोमों की संख्या है ना उसको 100 से गुणा करेंगे तो इतने तो वर्ष हो जाएंगे। यहाँ समयों की संख्या गिननी है, यह असंख्यात का नाप है ना, 100 वर्षों के जितने समय है उतने समयों से इनको गिनना पड़ेगा रोमों को। इस व्यवहार पल्ल्य से संख्या का माप किया जाता है, यह असंख्यात संख्या है। कैसे निकाली वो रोमों की संख्या जो है, 100 साल के बाद एक रोम निकाला
वो तो साल का समय गिना,
तो पूरा टोटल समय नहीं, मान लेते हैं ना उसमें 1000 रोम आए तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 वर्ष यानी कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 100 कितने होते हैं, लाख लाख वर्ष हो जाएगी। अब उसके समय निकाल वो तो असंख्यात ही होगी ना, हाँ उसको कहेंगे, उस असंख्यात को कहेंगे व्यवहार पल्ल्य। वर्ष भले हम उसमें संख्यात हो गए परंतु समय असंख्यात है, समयों की संख्या को हम लिखे। व्यवहार पल्ल्य इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात वर्षों के समयों की राशि इज इक्वल टू उद्धार पल्ल्य। वैसे हमने पढ़ा था असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से उसको गुणा करना है, हाँ ये शायद वहां पर गाथा में आ जाएगी बात। और उद्धार पल्ल्य को असंख्यात वर्षों के समयों की राशि, यहाँ तो असंख्यात वर्ष बराबर है परंतु ऊपर असंख्यात करोड़ वर्ष लिखना चाहिए था, हाँ व्यवहार पल्ल्य मल्टी बाय असंख्यात करोड़, और यहाँ केवल असंख्यात वर्षों के समय से। केवल असंख्यात वर्ष और असंख्यात करोड़ वर्ष इसमें डिफरेंस है, हाँ है परंतु उसमें नाप में है ना,
माप का डिफरेंस है।
यानी वो उद्धार पल्ले राशि उसको और असंख्यात वर्षों के समय से गुणा करेंगे तो अध्यापल्ले की राशि आती है, जिसमें हम इतने सागर का कर्म बांधा वगैरह कहते ना वो ये अध्यापल्ले होता, उसमें वो सागर आता है। देखो 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्ले का एक व्यवहार सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक उद्धार सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक अध्या सागर होता है। अब आगे 103-4 गाथा में लवण समुद्र को सागरोपम संख्या की अनवर्थता दिखलाने के लिए कुंडो आदि का प्रमाण निकाला गया है, यानी उसको सागर क्यों कहा, एक सागर में ऐसे कितने पल्ल्य समा जाते हैं, वो एरिया वाइज उसका नाप निकाल के उसको समझाया, जो हमने जीव कांड में भी पढ़ा था, अभी हमारी रिवीजन हो जाएगी। अभी यहाँ कुछ ऐसे नियम बता रहे हैं आगे, ये अर्धच्छेद वगैरह कैसे निकालना क्या है, और ये सुच्छंगुल प्रतरांगुल, हाँ अभी गाथा में हम जाएंगे क्योंकि यहाँ केवल उतना उतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये हमने तो साधारण की बातें देखी है, अब इसके बाद वो अंगुल क्या, प्रतरांगुल क्या, घनंगुल क्या, उसके बाद बताइए। और फिर अलग अलग टाइप के जो उसके क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो बात बताई है, और उसमें वो तो जो भ्रमण का होता है ना चंद्र सूर्य का, उसकी बात कुछ बताई है। वो जब उसकी गाथाएं आएगी ना तभी उसको हम विस्तार से देखेंगे। यानी इस तरह से अभी तक तो हमने वो साधारण बहुत स्थूल रूप से जो यहाँ आती है बात, वहां तो विस्तार से बात आएगी, अभी तो उसका यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त प्रकार से उन्होंने बताया है। यहाँ से अपनी बात चालू हो जाती है। देखो ये मूल ग्रंथकार तो श्रीमद नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है, उसका नाम है त्रिलोकसार ग्रंथ। केवल वो पहले की संस्कृत गाथाएं अभी पढ़ेंगे जो माधव चंद्र जी की रचना है। देखो पहले पेज से निकाल लें, श्री नेमी चंद्राय नमः, अभी वहां से एक नंबर है ना पेज में, श्रीमन नेमी चंद्राचार्य विरचिता त्री त्रिलोकसारा, श्रीमन माधव चंद्राचार्य विरचिता संस्कृत टीका। अब ये संस्कृत के हम श्लोक पढ़ेंगे। त्रिभुवन चंद्र जिनेन्द्रम भक्त्यानत्य त्रिलोकसारस्य वृत्तिरियं किञ्चिज्ञ प्रबोधनाय प्रकाशते विधिना जीयाद कलंकाद्य सूरिर्गुण भूरिरतुल वृषधारी अनवरत विनत जिनमत विरोधिवादि व्रजो जगति यस्मादखिल बुधानां विस्मयकृदभूत प्रवृत्ति यस्य तच्छासनमपनुदत्तात् अनघं घनकुमततिमिरनिवहमतः। अब ये जो हिंदी टीकाकार है उन्होंने भी संस्कृत में तीन श्लोक रचे हैं, उसको भी अभी पढ़ेंगे, उसका अर्थ हम कल देखेंगे। श्रीमत् पार्श्वजिनेन्द्र पाद युगलम वाणीं जिनास्योद्गतां सूरिं श्रीवर वंदनीय चरणान् श्रीनेमि चंद्रादिकान् शांतिं वीर महाम्बुधिं शिवयतिं शास्त्रोदधिं सन्मतिं धर्माब्धिं यजितं महागुणयुतं भव्यावली सन्नुतं नत्वा श्रद्धरधा महर्षि निचयं भव्योगमोहश्चिदे टीका मंद जन प्रबोध जननीं त्रैलोक्य सारस्य वै पूर्वेहं शिव सूरि भूरि कृपया प्राप्तार्यिका सद्व्रता संत्राता श्रुसागरेण मुनिना याचार्य कल्पेन च गुरुणां कृपया सैषा विशुद्धिमति संगीता प्राब्ध कार्य निर्वाह दीक्षा दक्षा भवत्वरम। ये विशुद्धमति आरिका ने ये रचना की संस्कृत में, उन्होंने अपने गुरु का नाम भी बताया है और बाकी भी बातें लिखी है। ये तो संस्कृत तो हम छोड़ देते हैं, हिंदी हिंदी पढ़ेंगे है ना। अब यहाँ से शुरू देखो देखो आगे के तीन नंबर के पेज पर आगे अभी जो हमने पढ़ा ना उसी के आगे नहीं 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 उसके नेक्स्ट पेज जहाँ से मूल नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना शुरू हुई है वो बल गोविंद सिंहामणि जो है ना उसको हमने कहा था, क्योंकि हम हमेशा मूल ग्रंथ की जो पहली गाथा है उसको मंगलाचरण में हम देखते हैं हमेशा है। इसलिए वहां से हम लेंगे। अब यहाँ जो लिखा हिंदी भाषानुवाद और उसके अभी हम जो श्लोक पढ़े थे उसका अर्थ उसको हम कल देखेंगे। आज बहुत भारी हो गया ना। कुछ नहीं होता है, पहले पहले दिन का आसान हो जाता है फिर। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवानी मस्तकनम सदा देत हो।